अहम और मशीन, कैसे पूंजीवाद ने पवित्र को आत्म से बदल दिया। मानवता ने कभी खुद को एक विशाल और रहस्यमय चीज का हिस्सा समझा था, ब्रह्मांड, पृथ्वी, दिव्य, जीवन का शाश्वत लय। प्रत्येक संस्कृति का अपना तरीका था यह कहने का कि अर्थ निहित है स्वामित्व में नहीं, बल्कि भागीदारी में, संचय में नहीं, बल्कि संबंध में। फिर भी पिछले कुछ शताब्दियों में, विशेष रूप से पूंजीवाद और औद्योगिक आधुनिकता के उदय के साथ, यह दिशा सूचक उलट गया है। जहां कभी पवित्र मानव जीवन को दिशा देता था, वहां आत्म ने सिंहासन संभाल लिया है। पारलौकिकता की पुरानी खोज, अहम से परे जाना, को हम की तुष्टि की अंतहीन खोज ने बदल दिया है। मिथकों की मृत्यु से छोड़े गए शून्य में उपभोक्तावाद नया धर्म बन गया और बाजार इसका मंदिर। मानवता ने आंतरिक मुक्ति को भौतिक प्रचुरता के लिए बदल दिया और ऐसा करने में खुद को अजीब तरह से खाली पाया। स्वदेशी और प्राचीन विश्वास, चक्र में जीना। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के उदय से बहुत पहले स्वदेशी और प्राचीन समाज ऐसी विश्व दृष्टियों के अनुसार जीते थे जो आत्म और विश्व के बीच की सीमा को भंग कर देती थी। इन संस्कृतियों में जीवन एक स्वामित्व नहीं था, बल्कि एक संबंध था जिसमें भूमि, जानवरों और अदृश्य के साथ पारस्परिक बंधनों का ताना बाना था। जीवन का जाल। कई मूल अमेरिकी राष्ट्रों में विश्व को एक परस्पर जुड़े हुए जाल के रूप में समझा जाता था, महान चक्र या पवित्र घेरा, जहां मानव प्राणी जानवरों, पौधों, नदियों और तारों के साथ रिश्तेदार थे। लकोटा वाक्यांश मीतकुए ओयासी, मेरे सभी रिश्तेदार, पारस्परिकता की एक आध्यात्मिकता व्यक्त करता है जो पारिस्थितिक विज्ञान द्वारा इसके गूंजने से सदियों पहले थी। इस विश्व दृष्टि में आत्म एक पृथक चेतना नहीं है, बल्कि एक जीवंत नेटवर्क में एक नोड है। किसी की पहचान संबंधप्रक होती है, समुदाय, पूर्वजों और स्वयं परिदृश्य द्वारा आकारित। समग्र के प्रति श्रद्धा के बिना कार्य करना स्वयं को घायल करना है। इसलिए आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ है अलगाव की भ्रांति को भंग करना, मानव से अधिक विश्व के बीच विनम्रता के साथ जीना। अनुष्ठान, भेंट और मौसमी समारोह केवल अंधविश्वास नहीं थे, बल्कि संतुलन के कार्य थे। यह स्वीकार करना कि जीवन चक्रों में प्रवाहित होता है, कि देना प्राप्त करने को बनाए रखता है। शिकारी ने हिरण की आत्मा को धन्यवाद दिया, किसान ने वर्षा के लिए प्रार्थना की, कहानीकार ने पूर्वजों को पुकारा। सभी जीवन एक पवित्र विनिमय में भाग लेता था। प्राचीन सभ्यताएं और पवित्र ब्रह्मांड। प्राचीन मिस्र, भारत, ग्रीस और मेसोअमेरिका में समान थीम उभरती हैं। ब्रह्मांड निष्क्रिय पदार्थ नहीं था, बल्कि जीवन था, दिव्य बुद्धि से संनादित। मिस्र की अवधारणा मात, सत्य, संतुलन, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ग्रीक कॉस्मॉस दोनों एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता की ओर इशारा करते हैं जिसमें प्रत्येक प्राणी का स्थान होता है। मानवता की भूमिका प्रकृति पर हावी होने की नहीं थी, बल्कि उसके सामंजस्य को प्रतिबिंबित करने की थी। मंदिरों को ब्रह्मांड की प्रतीकात्मक प्रतिकृतियों के रूप में बनाया गया था और पुजारी विश्वों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। जब मानवता अपनी ब्रह्मांडीय भूमिका को भूल गई, जब अहम और लालच ने मात को बाधित किया, तो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, अकाल, युद्ध, नैतिक पतन। ताओवाद, अस्तित्व का प्रवाह। प्राचीन चीन में ताओवाद ने इन अंतर्ज्ञानों को दार्शनिक परिष्कार तक पहुंचाया। ताओ ते चिंग सिखाता है कि मार्ग, ताओ सभी अस्तित्व का स्रोत और लय है। ऋषि वो वेई, सहज क्रिया के माध्यम से अहम को भंग करता है, जिससे जीवन स्वयं के माध्यम से जीवित हो सकता है। लाओत्से ने लिखा, सर्वोच्च भलाई पानी की तरह है, जो सभी चीजों को लाभ पहुंचाती है और प्रतिस्पर्धा नहीं करती। ताओ के विपरीत सीना, प्रयास करना, बल प्रयोग करना, प्रभुत्व जमाना, दुख है। ताओ में वापस लौटना पारदर्शी बनना है, जैसे पहाड़ी से नीचे बहता पानी, आकार लिया हुआ लेकिन अटूट। यहां फिर से अहम का विलय विनाश नहीं है, बल्कि संरेखन है। यह पुनर्जनन की व्यक्तिगत धारा ब्रह्मांडीय नदी से अविभाज्य है। साझा ज्ञान। इन विविध परंपराओं में स्वदेशी, मिस्र, ताओवादी, वही अंतर्दृष्टि चमकती है। अर्थ, विवेक और अस्तित्व इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम याद रखें कि हम समग्र के हैं। आत्म कुछ असीम रूप से बड़े का एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, एक महान आग में चिंगारी। इसे भूल जाना मूल पाप है, अलगाव में गिरना। इसे याद करना मुक्ति है, इससे बहुत पहले कि यह शब्द कभी विश्वास का अर्थ रखता हो। समकालीन धर्म, अलग आत्म की मृत्यु। जैसे जैसे मानवता के दर्शनशास्त्र विकसित हुए और औपचारिक धर्म उभरे, वही रहस्यमय धागा नई भाषाओं और पौराणिक रूपों में प्रकट होता रहा। बौद्ध धर्म, न आत्म का मौन। बौद्ध धर्म में अनत्ता, न आत्म की शिक्षा एक स्थायी, स्वतंत्रमय की भ्रांति को तोड़ देती है। जो हम आत्म मानते हैं, वह संवेदनाओं, धारणाओं, विचारों और चेतना का प्रवाह है। मुक्ति तब उत्पन्न होती है जब यह भ्रांति भंग हो जाती है। छिपकने का अंत निर्वाण है, अहम के आग, लालसा, घृणा और अज्ञान का बुझ जाना। बौद्ध अभ्यासी सावधानी और करुणा में प्रशिक्षण लेता है ताकि आत्म की सीमाओं को ढीला कर सके। जब हम देखते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं क्षणिक हैं, हम उनके साथ तादात्म्य करना बंद कर देते हैं। जो रहता है वह स्वयं चेतना है, दीप्तिमान, केंद्रहीन, मुक्त। बुद्ध ने हमें बेहतर आत्म बनना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें आत्म से मुक्त होना सिखाया। हिंदू धर्म भीतर का अनंत। हिंदू दर्शन में, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में, अहम अज्ञान अविद्या का एक पर्दा है। इसके नीचे आत्मन निहित है, सच्चा आत्म, जो व्यक्तिगत नहीं है बल्कि ब्रह्मन, अस्तित्व का अनंत आधार, के साथ समान है। प्रसिद्ध उपनिषद वाक्य तत्त्वमसि तू वह है, घोषणा करता है कि व्यक्ति का सार ब्रह्मांड के सार के समान है। मुक्ति, मोक्ष का मार्ग इसलिए व्यक्तित्व की पूर्णता नहीं है, बल्कि उसका अतिक्रमण है। जब लहर को पता चलता है कि वह पानी है, तो अस्तित्व का सागर स्वयं को प्रकट करता है। अहम शून्य में नहीं, बल्कि अनंत में विलीन हो जाता है। इस्लाम और सूफीवाद, प्रिय में विलोपन। इस्लाम में अंतिम सत्य तौहीद है, सभी अस्तित्व की एकता में ईश्वर की एकता। इस्लाम के रहस्यवादी सूफी ने इस सिद्धांत को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। स्मरण, जिक्र और प्रेम के माध्यम से साधक का अहम प्रिय की चमक में पिघल जाता है, जब तक कि केवल ईश्वर ही रहता है। उड़ने वाले सूफी की कहानी इस सत्य को मूर्त रूप देती है। एक दरवेश गहरी भक्ति के माध्यम से उड़ना सीखता है, लेकिन जब वह उड़ रहा होता है, एक विचार उसके दिमाग में आता है, मेरे परिवार को क्या लगेगा जब वे सुनेंगे कि मैं उड़ सकता हूँ? तुरंत वह जमीन पर गिर जाता है। उसका गुरु उसे बताता है, तू अच्छा उड़ रहा था, लेकिन तूने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही स्वचेतना लौटती है, अनुग्रह गायब हो जाता है। सूफीवाद में इसे फना कहा जाता है, ईश्वर में आत्म का विलोपन। लेकिन इस विलोपन के बाद बका आता है ईश्वर में स्थायित्व। अहम मर जाता है और जो रहता है वह शुद्ध उपस्थिति है। यहूदी धर्म आत्म का शून्यकरण। खबला यहूदी धर्म में रहस्यवादी बिट्टुल्हा येश की तलाश करता है अहम के कुचपन का शून्यकरण, ताकि एन सो अनंत से मुलाकात हो सके। सदिक्या धर्मी व्यक्ति वह है जो खुद को इतना पूर्ण रूप से खाली कर देता है कि दैवी प्रकाश उसमें बिना किसी बाधा के प्रवाहित होता है। इस रहस्यमय भाषा में विनम्रता नम्रता नहीं है, बल्कि आंतोलॉजिकल सत्य है, केवल ईश्वर ही वास्तव में है। जितना अधिक अहम भंग होता है, उतना ही दैवी विश्व में दृश्यमान होता है। ईसाई धर्म खाली करना और भीतर का निवास। ईसाई रहस्यवाद केनोसिस स्व खाली करने की अवधारणा में अपनी संस्करण प्रदान करता है। संत पॉल ने लिखा, मैं जीता हूँ, फिर भी मैं नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जीता है। माइस्टर एकार्ट के लिए आत्मा को स्वयं से खाली होना चाहिए ताकि ईश्वर उसमें जन्म ले सके। चिंतनशील ईसाई धर्म में रेगिस्तान के पिताओं, अज्ञान के बादल और कार्मेलाइट रहस्यवादियों की परंपरा में प्रार्थना चीजों की मांग नहीं है, बल्कि स्थिरता में प्रवेश है, जहां हम चुप हो जाता है और दैवी उपस्थिति सब कुछ में सब कुछ बन जाती है। विक और पाग्नवाद पवित्र चक्र का पुनर्जनन। आधुनिक विक और समकालीन पाग्नवाद हालांकि अक्सर नए धर्मों के रूप में खारिज किए जाते हैं, अंतर्निहितता की प्राचीन स्मृति को वहन करते हैं। यह विचार कि दैवी विश्व में है, न कि इसके ऊपर या परे। देवी का प्रभार में विक की केंद्रीय ग्रंथों में से एक देवी घोषणा करती है, प्रेम और आनंद के सभी कार्य मेरे अनुष्ठान हैं। यहाँ दैवत्व दुनिया से भागकर नहीं मिलता, बल्कि इसे पूर्ण रूप से और श्रद्धापूर्वक गले लगाकर। अहम उत्साह और अवतार के माध्यम से भंग होता है, न कि तपस्या के। अनुष्ठान चक्र अस्तित्व की समग्रता को दर्शाता है, कोई पदानुक्रम नहीं, कोई अलगाव नहीं। जब उच्च पुजारी महिला या प्रभु को पुकारती है, तो यह एक बाहरी देवता नहीं है जो उतरता है, बल्कि सभी प्रतिभागियों के भीतर और बीच में देवी का जागरण है। मौसमी उत्सव वर्ष का चक्र सिखाते हैं कि मृत्यु और पुनर्जनन, अंधेरा और प्रकाश एक निरंतर नाड़ी है। अभ्यासी यह सीखता है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका अभिव्यक्ति है। उत्साहपूर्ण नृत्य में, ट्रांस में, पृथ्वी और आकाश के साथ संनाद में आत्म की सीमा पतली हो जाती है, जब तक कि कोई यह महसूस न करे, मैं जंगल हूँ जो सांस लेता है, मैं चंद्रमा हूँ जो पानी में खुद को देखता है। विक का पारलौकिकता का मार्ग इसलिए अंतर्निहित है, न कि ऊर्ध्वाधर। अहम स्वर्ग की ओर नहीं, बल्कि पृथ्वी के जीवंत जाल में बाहर की ओर भंग होता है। मनोविज्ञान मास्लो और पारलौकिकता का विज्ञान। 20वीं सदी में मनोविज्ञान ने वह फिर से खोज करना शुरू किया जो रहस्यवादी हमेशा जानते थे। इब्राहिम मास्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम मानव प्रेरणा का वर्णन करने के लिए प्रतीकात्मक बन गई, बुनियादी अस्तित्व से लेकर प्रेम और सम्मान तक, और अंत में स्वप्रकटीकरण में। लेकिन अपने जीवन के अंत में मास्लो ने अपने मॉडल को संशोधित किया। स्वप्रकटीकरण से परे उन्होंने एक और चरण को मान्यता दी, स्वपारलौकिकता। यहाँ आत्म की सीमा भंग हो जाती है। व्यक्ति किसी बड़े चीज का भागीदार बन जाता है, चाहे वह सेवा हो, रचनात्मकता हो, प्रकृति हो या रहस्यमय एकता हो। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसे पुष्ट करता है। जब लोग गहरी ध्यान, उत्साहपूर्ण प्रार्थना या प्रवाह अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे आत्म की भावना को बनाए रखता है, शांत हो जाता है। व्यक्तिपरक सहसंबंध अहम का विलय है, जिसके साथ शांति, करुणा और एकता होती है। मास्लो, बुद्ध और सूफी ने अपनी अपनी भाषाओं में जो देखा, वह यह है कि मानव की उच्चतम क्षमता आत्म की पूर्णता में नहीं, बल्कि उसके अतिक्रमण में निहित है। पूंजीवाद, अहम की मूर्ति पूजा। और फिर भी वह सभ्यता जो आधुनिक विश्व पर हावी है, विपरीत धारणा पर आधारित है कि आत्म को भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अनंत रूप से विशाल करना चाहिए। पूंजीवाद अपने मनोवैज्ञानिक सार में अहम की भूख पर निर्भर करता है। यह आध्यात्मिक लालसा को उपभोक्ता इच्छा में बदलकर फलता फूलता है, हमें यह विश्वास दिलाकर कि भीतर का शून्य स्वामित्व, शक्ति, स्थिति और उत्तेजना से भरा जा सकता है। विज्ञापन उत्पाद नहीं बेचता, यह लालसा निर्मित करता है। यह हमें कहता है, तू अधूरा है, लेकिन यह तुझे पूरा करेगा। यह चीजों के माध्यम से मुक्ति बेचता है। यह विरोधाभास दुखद है, अहम की असंतुष्टि, जिसे प्राचीन ज्ञान ने पारलौकिकता के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था का इंजन बन गई है। शून्य अब आध्यात्मिक समस्या नहीं है, यह एक व्यवसाय मॉडल है। इस प्रकार जो कभी दुख का मूल माना जाता था, लालसा, आसक्ति, अभिमान, उसे पुण्य के रूप में पुनर्ब्रांड किया गया है, महत्वाकांक्षा, उत्पादकता, उपलब्धि, एकता या शांति की खोज, इस विश्व दृष्टि में अनुत्पादक है, यहाँ तक कि खतरनाक, क्योंकि यह इच्छा की मशीनरी को खतरा देता है। पूंजीवाद का मंत्र शांत रहो और जानो नहीं है, बल्कि बड़ा, बेहतर, तेज और अधिक है। और फिर भी जितना अधिक हम आत्म को खिलाते हैं, उतना ही वह भूखा होता जाता है। शॉपिंग मॉल और डिजिटल फीड से सशांत देवता, अहम की मूर्ति के लिए कैथेड्रल हैं, जो अंतहीन रूप से उपभोग करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पैदा करते जो वास्तव में संतुष्ट करे। निष्कर्ष, पवित्र की वापसी। आधुनिकता का संकट केवल आर्थिक या पारिस्थितिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। एक अहम के आसपास संगठित सभ्यता खुद को बनाए नहीं रख सकती, क्योंकि अहम कोई सीमा नहीं जानता। यह पृथ्वी, एक दूसरे और अंततः खुद को ही उपभोग करता है। लेकिन हमारे चारों ओर जागृति के संकेत हैं, लोग ध्यान, समुदाय, पारिस्थितिक जागरूकता और एकजुटता के नए रूपों की ओर मुड़ रहे हैं। विज्ञान भी अब वह स्वीकार करने लगा है जो ऋषियों ने बहुत पहले घोषित किया था, कि मन, ग्रह और आत्मा का स्वास्थ्य अविभाज्य है। अहम को भंग करना स्वयं को खोना नहीं है, यह घर लौटना है, उस एकता को पुनर्जनन करना जो कभी खोई नहीं थी, केवल भुला दी गई थी। अगली क्रांति हथियारों या एल्गोरिदम से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि चेतना से होगी। जब मानवता यह याद करेगी कि हम विश्व के स्वामी नहीं, बल्कि इसके क्षण हैं, तब पवित्र जागेगा, मंदिरों या सिद्धांतों में नहीं, बल्कि जागरूकता, करुणा और सादगी के प्रत्येक कार्य में। संदर्भ और आगे की पढ़ाई। प्राचीन और स्वदेशी विचार। ब्लैक एल्क, ब्लैक एल्क स्पीक्स, जॉन जी निहार्ट, 1932। वाइन डिलोरिया जूनियर, गॉड इज रेड, ए नेटिव व्यू ऑफ रिलीजन, 1973। लाओत्से, ताओ ते चिंग, अनु डी सी लाओ, पेंगुइन क्लासिक्स, 1963। फ्रिट्ज़ोफ कैपरा, द ताओ ऑफ फिजिक्स, 1975। रहस्यवाद और विश्वधर्म। एल्डस हक्सले, द परेनियल फिलॉसफी, 1945। टीटी सुजुकी, एसेज इन ज़ेन बुद्धिज्म, 1927। स्वामी विवेकानंद, ज्ञान योग, 1899। इनेमारी शिमेल, मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम, 1975। केशम शुलेम, मेजर ट्रेंड्स इन ज्यूश मिस्टिसिज्म, 1941। माइस्टर एकार्ट, सिलेक्टेड राइटिंग्स, पेंगुइन क्लासिक्स, 1994। विकर और नवबागनवाद। डोरीन बेलेंटे, द चार्ज ऑफ द गॉडेस, 1957। स्टारहॉक, द स्पाइरल डांस, 1979। रोनल हटन, द ट्रायंफ ऑफ द मून, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पेगन विचक्राफ्ट, 1999। मनोविज्ञान और आत्म। इब्राहिम मास्लो, द फार्दर रीचेस ऑफ ह्यूमन नेचर, 1971। मिहाली चिक्सेंटमिहाली, फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, 1990। विलियम जेम्स, द वराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, 1902। स्टैनिस्लाव ग्रोफ, साइकोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, 2000। संस्कृति और पूंजीवाद। Erich Fromm, To Have or To Be? 1976 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, 1979 Naomi Klein, No Logo, 1999 Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, 2013.